ya perbuatan tak tamatnya itu hak परिष्कार ब्रह्म गोपियों के प्रति क्या भाव है इसको वो बतला रहे हैं बर्तन हम उसके संबंध में बतला रहे हैं पहले कृष्ण अपने आप गोपियों से साक्षात रूप में बातचीत की और पूछे उन्होंने जो उद्भव को कहा था और उद्भव ने गोपियों के पास व्यापक के उनके भाव को देखा और जो अपना संदेश दिया था उद्भव को उनका यहाँ पर वर्णन कर पहले ये समझना चाहिए ये सनातन गोस्वामी का के लिए ये सब रसायन का संचयन कर रहे हैं उत्तम अधिकारी साधारण अधिकारी को समझ नहीं मिलता पहले शाप इसको पढ़ने पहले ये समझिए हम लोग भक्ति के साधक अभी हैं कि नहीं है पहले की चीज को समझिए हम लोग क्या है एक तरह से साधक आभास यदि कह दिया जाए तो कोई दोष नहीं साधक आभास अभी शुद्ध साधक नहीं इसमें से कुछ लोग हो सकते हैं सबके लिए नहीं किंतु अधिकांश साधक नहीं साधक आभास करे जाते हैं Stating that we are not all sadhak, pure sadhak. They may be called sadhakabhas. But we think that we are devotees. But actually, there is a thing, we will come to conclusion that really we are not sadhak. जब कोई भक्त साधु संघ में गुरु की महिमा जानकर गुरु से नाम और दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात संबंध ज्ञान के साथ में भजन करने लगता है उस समय उसके अंदर रहेंगे श्रद्धा निष्ठा रुचि आसक्ति तक भी रहेंगे किंतु वो साधन क्या करेगा अन्या विलासिता शून्यम ज्ञान कर्मात्म अनुकुलन कृष्ण अनुशीलन इसका साधन करेगा तब साधक ऐसे संबंध ज्ञान के साथ भाव भक्ति के लिए जब साधन करेगा तब वो साधक कहलाएगा जो ये जानता ही नहीं है अन्या विलासिता शून्य का तात्पर्य जाता ही नहीं है अन्नाभिलाषिताशून्य ज्ञान कर्म आदि अनाकृतम और अनुकुल्य में कृष्णानुशीलन किसको कहते हैं कृष्ण के प्रति के लिए साहित्य वाचिक और मानसिक समस्त प्रकार की चेष्टाएं और प्रतिकूल चेष्टाओं में उनको दूर रखकर रखने की चेष्टा और यहां तक कि भाव भी उनके लिए तब तो ये साधक उसमें उसकी कायिक वाचिक और मानसिक चेष्टाएं कभी भी अपने लिए नहीं होगी तब तो वो साधक अवश्य कृषि के लिए सफल करेगा हो सकता है कि अलग करे कोई हल नहीं तब तो वो साधक कहलाया जब वो समझे कि भाव किसको कहते हैं और भाव को पाने के लिए साधन करेगा तब तो साधक और ऐसे साधक भी कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम भी, तीन प्रकार के साधक। उत्तम वाले भी अधिकारी हैं, वो साधन के भी। वो किस चीज के हैं उत्तम वाले? भाव की अभी हो सकती है, जो प्राप्ति कुछ हुई है, स्वर्ग सिद्धि भी हुई है, प्रेम की सिद्धि के लिए वो साधन। इसलिए पहले हम लोग समझ बूझ करके जब साधन करेंगे तब तो साधक ही कोटि है। अभी उद्देश्य हमारा निश्चित नहीं है, संबंध ज्ञान भी नहीं है, अनर्थ भी खड़े करे। इसलिए ऐसे व्यक्ति लोग भाव के लिए साधन करेंगे, नित्य सिद्ध से प्राकटंग रीति साधकता, नित्य सिद्ध जो भाव है अपने हृदय में वो भाव प्रकट करने के लिए जब इंद्रियों के द्वारा किसी का उत्तम भक्ति जो है उसका साधन करेंगे अपने अधिकार के अनुरूप, तब नहीं। ये साधक भी दो प्रकार के, बड़ी भक्ति के साधक और राधानुगा भक्ति के साधक। जगत बिजले बहुत वो अपने आप उनका साधन करते, जो कि राधानुगा उनको लोभ देते। लोभ भी दो प्रकार का, एक शुद्ध लोभ और एक लोभापास। जगत में अभी जो हम देखते हैं लोभापास, दिव्य मंगल को जब लोभ हुआ तो उन्होंने अपनी आंखें खोल दी और इस आंखों से कोई भी सौंदर्य नहीं देखेंगे, सौंदर्य देखेंगे भाव में शुरू से कुछ, तब उनको साधक कोटि में लाएगा। इसलिए इन सबको विचार करके जो लोग इनको सुनेंगे, जिनको लोग हुआ है भक्ति में, गोपियों जैसी हमको भक्ति चाहिए, सेवा की स्मृति चाहिए उनके। जिस समय में ऐसा लोग होगा उस समय में अपना सेवक नहीं बनेगा, जो दूसरी हमारी सेवा करेगा, सारी इंद्रियों से कृष्ण की सेवा करेगा और दूसरों से भी करेगा। इसलिए सनातन गोस्वामी जी श्रीमद भागवत से इन श्लोकों को उद्धरण गच्छोद्भव स्वयं स्वयं कृष्ण गुरु जी के पाठशाला में पढ़कर उज्जैन से भी लौट और आते ही जमुना जी को देखा और उत्तर की दिशा में अपनी अट्टालिका पर वसुदेव महाराज की अट्टालिका और भावों से दफ्तर आंखों से आंसू कुछ विकल से हमारे जीवन में न जाने वृत्ति की अवस्था होगी और पशु पक्षी बोलते नहीं, क्वेल नहीं, मोर नहीं नृत्य करते, गायें घास नहीं खाती, बछड़े दूध नहीं थी, उसमें से तो क्या देता। इसलिए ऊपर में अट्टालिका के ऊपर में चढ़कर कुछ व्यतीत गिरा व्यतीत होकर इसका गिरा वो भी होता। पहले हमने कृष्ण के प्रति गोपियों का विरह का वर्णन किया सनातन गोस्वामी, और कृष्ण के विरह का, कृष्ण का भी को भी विरह होता है। सब जितने भी जगत में भक्त हैं उनके लिए वो सोचते हैं, विशेष करके जो शरणागत भक्त हैं, जो सचमुच में शरणागत, उनकी प्रार्थना भी सुनते हैं। यद्यपि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने ये प्रश्न किया, जब कृष्ण वृंदावन के विलास में ही तन्मय रहते हैं तो भक्तों की प्रार्थना कौन सुनता है? विलास में करने पर भी अपनी अचिंत शक्ति के प्रभाव से, जो माया के प्रभाव से प्रार्थना, किसी भी भक्त को भूलते नहीं। वृंदावन से उनके रसिक और भावुक भक्त हैं गोपियां, किंतु और लोगों की भी उपेक्षा नहीं कर इसी के लिए उपेक्षा नहीं करते। तो गोपियों के प्रति, ब्रजवासियों के प्रति, माता पिता के प्रति, भक्तों के प्रति कृष्ण की चीज क्या इन श्लोकों को पहले गोपियों के प्रति उन्होंने दिखा, ब्रजवासियों के प्रति विशेष करके फिर गोपियों के प्रति कुत्तों को जो संदेश दे रहे हैं उसमें ये बता रहा है कृष्ण भी बड़े दूर में दुखी तब उस मैंने उद्धव जी उनको खुलते खुलते आए और खुलते खुलते अट्टालिका पर पहुंचे और कृष्ण को विरह में व्यथित देखा, साथ ही साथ कृष्ण इनको देकर के और भी भाव में भी दूर हो गए और हाथों को अपने हाथों में लेकर के ये उद्धव गच्छ जल्दी से जल्दी की गई है सौम्य समान चारू दर्शन बहुत ही उद्धव जी कृष्ण के समान ही सुंदर, कृष्ण के समान ही बहुत ही सुंदर। सोम माने होता है चंद्र और चंद्र से सोम से सौम, चंद्र जैसे सुंदर दिखता है
मधुर
सुशीतल होता है
मधुर प्रिय अमृत
वैसे गीता का सिंह इनको देखते ही भक्तों का हृदय मधुर और स्निग्ध हो गया कृष्ण के समान भाव भी वैसे ये तो इनको समझ पितृ हमारे जो पिता हमारे पिता हमारे दिलों में बड़े दुखी हैं, हमारे भैया हमारे दिलों में बड़ी दुखी हैं, कभी कभी ब्रेस के संदेश आते हैं कि तुम हमारे जो भी लड़के होते तो हमें छोड़कर के मथुरा में नहीं यशोदा जी पिता से खेत में किसी के हाथ से संदेश देते हैं और कृष्ण क्या आएंगे हम दोनों भैया मैया जल अपना मैया तुम ऐसा मत कहो मैं तुम्हें मर जाऊंगा मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं इसलिए वहां चला गया ऐसा यदि कहूंगी तो मैं मारा गया इसलिए फिर ऐसा मुक्का मैं जल्दी से तुम लोगों के मित्र वसुदेव और देवकी इनको सांत्वना देकर के उनसे सारे लड़के मारे गए और बसदेव जी भी हम यदि नहीं रहेंगे तो नहीं रहेंगे वहां बसदेव जी की प्रतिज्ञा है यदि कृष्ण नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे हमारे बाबा तो वसुदेव जी नहीं नंदनी हमारे पिता है मैया हमारी यशोदा हमारे पिता ने तो बाल्यकाल में ही हमें छोड़ दिया तो जो पालन पोषण करता है वो भी निश्चय में लाभ प्यार मिला हम उन्हीं के इसलिए कृष्ण तुम यदि नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे और यदि जबरदस्ती हमें रखा जाए तो हम जीवित नहीं रहेंगे इसलिए बलदेव को यहां रखने के लिए कुछ देंगे पुत्रहीन देवते और वसुदेव को कुछ संतान मिल जाए इसलिए मैं चुप देने के लिए मैं जल्दी से बस इसी आशा तंतु तंतु मैंने कह तंतु जैसे कमल की
नाड़ी में
तंतु होती है उसी क्रम के प्राण की के कृष्ण ने ये कहा है जैसे मैं बस इसी क्रम के आशा तंतु इसलिए उनको धैर्य धारा सांत्वना दिया चतुर्था के साथ में हम जैसे उनको प्रणाम करते थे वैसे ही कुंजी साष्टांग प्रणाम करना उनके चरणों को छूना और न पित्रो हमारे पिता हमारे क्या कहा कृष्ण के पिता है न किसके पिता है बदेव जी भी उनको पिता नहीं आदर सूचक में भी किसी को पिता के लिए बहुवचन का प्रयोग और उद्धव के लिए कहें तुम्हारे भी माता पिता कौन है नंद बाबा जो सोदा इसलिए हमारे सुखी माँ बाबा प्रतिम आओ आओ मैंने क्या है चतुर्ता के साथ कुशलता के साथ में जैसे कैसे उनकी प्रति को उत्पन्न करो, उनको सांत्वना दो, उसको बताते हैं। चतुर्ता में क्या हमारे पिता माता को समझाना बड़ी टेढ़ी खीर है, हमारे बिना उनकी सांत्वना नहीं हो सकती। मैं जानता हूं, मैं जब तक उनकी गोदी में नहीं बैठूंगा उनको सांत्वना नहीं, तभी तुम भी उसी चतुर्ता से उसी प्रकार से उनके चरण छूना, वैसे ही पिताजी कहना, वैसे ही प्रेम से उनके साथ में वार्तालाप करना, जैसे मैं उनके पास ही हूं, इस तरह से चतुर्ता होता है। कहने के बाद में अपने असल संदेश पर आए, गोपी ना मत दियो बाप, माता पिताजी को हमारा वियोग का दुख है, वो सह रहे हैं कुछ कुछ, मैया भी तो हो गई है किंतु मरी नहीं, पिताजी के भी ऐसी स्थिति है, मर भी उसमें एकदम तड़प, खाना पीना छोड़ दे, दुबले पतले हो गए, जब सुधा जी के सामने नहीं आते, तुमने हमको हमारे बेटे को सोने के आभूषणों पर बेच दिया, उसको नहीं लाया, इस डर से अपनी पत्नी के पास गए, सुधा जी के पास, किंतु उन लोगों से भी बहुत अधिक योग आवधि, उनको भी योग का दुख है, किंतु गोपियों को योग की अवधि, योग की अवधि माने क्या, अनुराग की सीमा को भी पार कर जाता है, अधिरूढ़ की भावना पर मोहन भाव धारण करता है, गोपियों मोहन से भी अति बढ़ जाती है। श्रीमती राधिका जी माधव की स्थिति में आ उस समय में चित्र जल पर और उसे दूसरे प्रेम ये सब उद्भाषण इत्यादि बहुत से सब भाव योगा, यहाँ तक कि प्रलय भी स्थिति को पार कर जाती, प्रलय मैंने होता है मुच्छ एकदम दूषित हो जाती है, संदेश बस संदेश, उनसे चतुर्ता मत करना खबरदार, उनको बतला देता पिताजी से चतुर्ता से व्यवहार कुछ कर सकते हो क्योंकि अवधि नहीं है, लेकिन उसे चतुर्ता मत करना, कोई भी बात चतुर्ता से उनको समझाने की चेष्टा मत करना, क्यों उनका वियोग और बढ़ जाएगा, सह नहीं सकेंगे, बस संदेश है इनको, तो हमारा संदेश जो तुम तो दे रहे हैं जैसा का तैसा कर रहे हैं, बस और कुछ हम तुमको ये संदेश दे रहे हैं। कृष्ण ने उनकी गोली में बहुत से संदेश दिए, जैसे संदेश की मिठाई होती है 10-20-25 या किसी चीज में दे दिया, कृष्ण ने एक ही उपदेश संदेश नहीं दिए, बहुत प्रकार के संदेश, देखो पहले ये कहना, जब किसी ने उनको सांत्वना ना तो ये संदेश कहना, उसके बाद में ये कहना, फिर ये कहना, एक एक दूसरे से संदेश संदेश ऐसे ये संदेश है। कृष्ण ने एक भाव से कहा, उद्धव जी ने कृष्ण के जितने हमारे जो संदेश है उसको समझा दिया, कृष्ण जिस जिस तरह से रो रहे हैं और रो करके अपने कुछ संदेश को बुद्धों के लिए दे रहे हैं, उद्धव जी सचमुच में उन भावों को वैसे ही उपलब्धि कर और गोपियों से बोले, शब्दों को तो कहा, जैसे एक रोइये मां, कृष्ण ने जिस तरह से कहा, जिस भावना से उनकी टोन में क्या स्वर छिपे थे उसको वो नहीं कर सकते, रोइये मत कहा, तो कृष्ण जिस भावना से कहा उद्धव जी अपनी भावना से समझे, अपने अधिकार के अनुसार हो सकते, और गोपियों ने समझा किस रूप में, उद्धव जो कहा उस रूप में, वो शब्द में जो अभिव्यंजित अर्थ था कौन छिपा हुआ था उसमें एक ही प्रकाश से नहीं बहुत प्रकाश से संत, कभी खींचती है, कभी मांगती है, कभी कुछ करती है, कभी सोचते हैं कि अब हमारे प्रियतम आ रहे हैं, कहीं आ गए अभी आ रहे हैं, अब जीवन भर नहीं आएंगे आशा भी उनकी। एक एक श्लोक उतना समझ नहीं सके जो हमारे ये कहने का संदेश गोपियों को प्राप्त हो, उनके मन में कैसी कैसी भावनाएं आ रही उतना नहीं समझ सके। यदि समझ लेते तो वो वृंदावन से फिर लौट करके मथुरापुरी में नहीं जाते, समझ नहीं सके। इसलिए कृष्ण ने जो शब्द कहा बस उसी शब्द को दोहराया, कि तो गोपियों ने उसका गुट से गुट कम भाव। सनातन गोस्वामी एवं सख्या देखे पहले कुछ सख्या रूप में गोपियों से कहा न पा रहे हम निर्बद्ध
मेरु राधा रमण जी हरी
माइक काम कर रहा है।
इसमें प्रपति का कोई संबंध ही नहीं है, व्यभिचार का इसमें कोई गंध नहीं है, बल्कि संसार में सबसे उन्नत चीज है। इसलिए मैं तुम्हारा में चिरकाल के लिए ऋणी हूं। मैं कोई भी कुछ उपकार दे करके तुम्हारा प्रत्युपकार करके तुम्हारा जिसे ऋण समय में इत्यादि। अब ये पहले श्लोक में आया है हमारे भक्तों के द्वारा उपकार उतना तो नहीं, किंतु उद्धव जी के मुख से आप उद्धव जी को उन्होंने कहा, एक होता है प्रत्यक्ष एक परोक्ष, गोपियां नहीं है कौन है उत्तम, और उद्धव से गोपियों की प्रशंसा करते हुए गोपियों के इन भावों को कितनी उन्नत है भाव ये, और गोपियां कितनी उन्नत है ये बात। अच्छा जो साक्षात रूप में कह रहे हैं और परोक्ष रूप में जो उद्धव को कह रहे हैं, दोनों में से कौन उन्नत है?
परोक्ष रूप में जो कह रहे हैं परोक्ष बात हो रही
है, उसमें कोई लाग लगाव नहीं है,
इसमें उसके लिए अरे तुम हमारी प्रतिक्रिया इसमें कुछ सफलता हो सकती है शर्तों का, किंतु दूसरों के माध्यम से जो उन्नत भक्त है उनसे जो उनकी तारीफ जो कर रहे हैं प्रशंसा कर रहे हैं ये हृदय की अंतिम आवश्यकता। इसलिए परोक्ष वाला जो है और भी प्रमाणित है, इसलिए पहले कृष्ण ने जो गोपियों से साक्षात रूप में कही अब उसको आप उद्धव के द्वारा जो संदेश विशेष दृढ़ता अपने पहले हुए जो गोपियों से कहा है उसी की ठीक अब दृढ़ता कर रहे हैं, अपने पक्षों से उनकी प्रशंसा करते हुए जो गोपियों का भाव कितना उन्नत और कितना निर्मल। विश्व में ऐसा कहीं किसी भी साहित्य में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जो गोपियों जैसा है। किसी को इस श्लोक से आरंभ करके और आठ से श्लोक बतलाएंगे श्रीमद् भागवत के लिए उसमें से गोपी का विषय असाधारण प्रसाद और अनुरूप व्यवहार संपादन भगवान स्वयं ब्रज में गहन नहीं कर करके मथुरा से नहीं गए, क्यों नहीं गए? अपने उद्धव को भेज रहे हैं, बद्रदेव जी को भेज रहे, ये कृष्ण क्यों नहीं गए? वृंदावन से मथुरा कितनी दूर है? दो अंगुल। कितना दूर है? पांच माइल या दो अंगुल?
दो अंगुल से भी कम।
आपका
देख रहे हैं
एक दूसरे के पास ही है। भाकरौ मथुरा की सीमा और उधर से भाकरौ वृंदावन की सीमा दोनों एक अलग भर का भी थोड़ी सी, किंतु परमार्थिक दृष्टि से आसमान और जमीन का बहुत इस भावना के अंतर को वही समझेगा जो ऐसा भजन पारायण है। तो कृष्ण यहां से नहीं जा सके, क्यों नहीं जा सके? भैयाचारण्य के लिए तो कहां आ जाए एकदम वृंदावन की सुना, तो क्यों नहीं वृंदावन में ये जा सकते? गोपियों के पास में क्यों नहीं गए? दूसरी बात जब नहीं गए तो कभी कभी आने जाने में क्या फर्क पड़ता है? जाते फिर चले। अच्छा, तो आप रखे फिर रखे नहीं गए, दूसरों से संदेश भेजने की क्या जरूरत है? खुद आकर के संदेश देकर के हम तो सांत्वना देकर फिर चले जाते, ऐसा प्रश्न है। तो साधारण आदमी के लिए नहीं, ये भजन राज्य में प्रवेश करने का तब यही समझिए कि संत वक्र जी पहले तो जरासंध जी ने आक्रमण कर रखा, यदि वो जान जाए ये कृष्ण के पिता नंद है तो क्या करेंगे? यहाँ पर कोई किला नहीं, कोई कुछ नहीं, सैनिक नहीं, कुछ दिन हमें मार करके उनको बर्बाद कर देता, इसलिए नहीं जा रहा। दूसरी बात कालगण और बड़े बड़े असुर लोग हैं, इनका भी विपद करना। बसदेव जी यदि वहां पर रहे और अक्रे महाराज कुग्रस हैं और कृष्ण है तो क्या होगा? एक दिन में इसलिए वहां से नहीं छोड़ रहे, किंतु इसके अतिरिक्त भी बहुत से कारण है, वह है प्रेम का। यदि कृष्ण ब्रज में आते हैं तो गोपियों का गर्व लाख गुना और अधिक बढ़ जाएगा जो मथुरा में है। क्या कहा, क्या समझा? अभी कृष्ण मथुरा में है तो उनकी छिपी हुई आग है किरातिया, यदि मथुरा से वो चले जाते हैं वृंदावन में एक दिन के लिए भी तो उनकी फिर आग भी कैसी होगी संभाल लेंगे?
यदि एक दिन के लिए
अधिक दिन जाने के लिए जितने अधिक दिन जाएंगे उतने नहीं चले, क्यों? यदि आग में कुछ देने के लिए लकड़ी या कोई चीज नहीं है तो आग अपने आप शांत रहेगी, यदि आग के लिए कुछ ईंधन हो तो क्या होगा? ईंधन देने से वो बढ़ेगी, तो कृष्ण इंसान स्वरूप भी हो रहे हैं, उनको देखते ही विरक्त आप और ये प्रेम सरोवर में कृष्ण ने दिख रहा है। उस समय राधा जी उनके पास में है और विराजमी में एकदम तड़पने लगी, मूर्छित हो गई कृष्ण की गोदी में, कृष्ण कहा नहीं कृष्ण का। इसलिए कृष्ण ने देखा कि हम ऐसे निष्प्राण बना दे सकते हैं, ना आपका लकड़ी रहेगी, ईंधन नहीं रहेगा और अपने आप मुक्त संत रहेगा, उसमें विरह में ही हमारा दर्शन करके बड़ी खुश रहेंगे, बड़ी खाएंगी, पिएंगी, सुनेंगे और हम रहने से उनकी विरह व्यथा बहुत बढ़ जाएगी। यदि किसी का लड़का है वही कहीं चला जाए तो 10-5 वर्षों में 20 वर्षों में उसके माता पिता टूट जाते, और बीच में वो लड़का आकर के माता पिता भेद करके फिर चला जाए तो क्या होगा? उनका जो पहला पीड़ा था ये जगत में इसका उदाहरण नहीं है, तभी एक छोटा सा प्रादेशिक उदाहरण। इसलिए स्वयं प्रज में नहीं जा सकते, उस गिरा सागर में जो जल रही है तड़प रही है, उनको देखने के लिए ताजे रखन जन
गोपाल
केवल संदेश भेज रहे, खुद नहीं गए, वहीं से दर्शन लो आशा पंत। ये क्या संदेश दिया? मैं अभी जो मथुरा के कुछ कार्य अवशेष है उसको कहते मैं कल या परसों तक जरूर आ जाऊंगा, आ गया समझो, आया ही
आया से
पर ऐसा समझे मैं आई गया, बस ये संदेश दिया। और गोपिया का कृष्ण के प्रति अगाध श्रद्धा है, विश्वास, जब उन्होंने कहा तो जरूर आएंगे, कृष्ण अपने बातों से कभी भी इनकार नहीं सकते, इसलिए वो जीवित हो रहे हैं, नहीं तो कभी की मर जाते। इस आशा तंतु किसको कहते हैं? मृणाल तंतु होती है, मृणाल माने कमल, कमल की गहरी तंतु बहुत कम जो
पतली होता है
के द्वारा संतना देने के लिए प्रजनों के आती है भगवान केशव एकांत अनुरक्त अपने भक्त के जो उद्धव जी है महामंत्री उद्धव जी उनको ये संभव उद्धव मैंने क्या उत्सव से ये उससे उत्सव है उत्सव माने आनंद की छलक
जाता
छलकता हुआ आनंद उत्स का नाम जिसके दर्शन से जिसके साथ वार्तालाप करने से आनंद की धारा बहने लगी उत्सव
जिसके दर्शन से उत्सव
तुम जगत के उत्सव उत्सव आनंद के उत्सव ये बृहस्पति के
शिष्य
तो बृहस्पति के दूसरी तरफ से गुरु है, शिष्य होने के प्रेम के गुरु हैं, शिक्षा के हो सकते हैं शिष्य में, ये तो उस परमात्मा के लिए गुरु हो सकते हैं। इसको ये समझिए उद्धव जी के अंश कला के किंतु कार्य है कि उनके अंश से देवता के लिए अगर तुम वहां जाकर तुम उपस्थित है महान उत्सव होगा, नंद बाबा को अपने आप संतना हो जाएगी और गोपियों में आनंद का उत्सव हो जाएगा, आनंद छलकने लगेगा, आप वहां पर जाओगे। इसलिए वहां जाकर के हमारे माता पिता हमारे योग की जो तरफ है प्रति विधान भावा विधान कर मूल में यह न माने हम लोगों के ये बहुवचन है इसके बहुत से कारण माता पिता के प्रति आकर सूचक होने से बहुवचन अथवा बलदेव और कृष्ण बहुवचन दो कहते हैं और बहुवचन में ये उद्धव इसमें उठा भी जब सोना मैया को और नंद बाबा को जगह है तो क्या बतलाए कहें
माँ बाबा
पिता जी मैया माता जी जैसे हम अपने मित्र की माँ को साधारण रूप में भी वृद्धा महिलाओं को हम बंगाल में तो छोटी छोटी लड़कियों को भी माँ बोलो माँ को इसलिए तुम पुत्र पुत्र की भांति जाना जैसे हम इसे पुत्र हैं और हम जैसे हम कृष्ण के साथ में बातचीत करते हैं उसी प्रकार से चतुरता से कुशलता से बात करते हैं उनके चरणों में पिताजी आपके लिए मेरा प्रणाम है करते थे सब काम प्रणाम तो ऐसे जो सुख में संतप है कैसे नंद संतप अपने संदेश में कृष्ण जी कह रहे हैं जो संदेश बाहर है माता जी को तो ये हमारा संदेश देना हम दोनों भाई आ रहे हैं अपुला करके मरो मत देखो हमारे जीरे में गैया तड़प रही है और बछड़े दूध नहीं पीते हैं घास नहीं चढ़ सके हमारे पिताजी को कह रहे हैं हमारे बड़ी प्रिय भैया है उनको जरा संभाल हमारे आने के पहले मरने जाए मैं बहुत जल्दी आ रहा पिताजी से ये कह देंगे पिताजी की हमारी बातों का स्मरण कराना जैसे उन्होंने किया था नंद बाबा क्या कर रहे हैं इसमें टिप्पणे में विवल हो गए उद्धव को देखते ही और कहने लगे मैं इस गिर से पार जाने के लिए घर में रह नहीं पाता घर में रहने से कृष्ण की के बछड़े खेलने के खिलौने उनकी बंसी छोटी उनकी झेंगली पीले वस्त्र छोटे छोटे देख करके अब रहा नहीं जा यशोदा जी की अवस्था देख करके घर में रहा नहीं जाता इसलिए मन को बहलाने के लिए मैं जमुना के किनारे चला जाता हूँ जो वहां पर शांति से कुछ समय व्यतीत करके लौट किंतु वहां जाने पर जितने भी पेड़ हैं वो पेड़ कृष्ण की गाथा कृष्ण कृष्ण के छोटे छोटे चरण से चिन्ह वहां पर उन पेड़ों को चढ़कर के खेल करते थे उनके चरण चिन्ह मैं कभी कभी कृष्ण और बलदेव को अपने कंधे पर लेकर के जाकर उनको स्नान कराना ये सब वहां पर स्मृति आ जाने से मुझसे रहा नहीं जाता अब मैं कहां जाऊं जरा गोवर्धन में जाकर के अपने मन को डाला तो वहां पर तो और भी गोवर्धन को जिसको धार किया था ऐसा कोई सरोवर नहीं है जिसमें कि वो स्नान नहीं करता ऐसे कोई वृक्ष और लता नहीं है जहां पर वो नहीं जाता इसलिए वहां मैं कहीं मुझे शांत और ऐसे उनको चतुरता के साथ में उनको समझा यहाँ चतुरता के सहित का विचार का क्या है आवह का आव माने चतुरता के साथ क्या तात्पर्य मैं जानता हूं कि मेरे बिना उनको कोई भी सांत्वना नहीं दे सकता मैं जानता हूं तुम्हारे जाने से भी नहीं होगा दूसरों के लिए दूसरा तो अभी तुम हमारे पास बहुत दिनों तक रहे हो हमारे स्वभाव को जानते हो हमारे स्वभाव के समान ही उनसे जाकर निष्कपट रूप में कभी उनकी गोली में बैठ सकते हो पिता पिताजी संबोधन कर सकते हो ये तरह से हमारे संदेश को अतः चतुर्ता के साथ यदि ये समझो मैं तुच्छ हूं उद्धव के लिए कर यदि तुम ये समझो पिताजी के सामने उनको क्या निष्कांतन असत की बात है यदि ये समझे मैं एकदम तुच्छ बड़ा हूं साथ है जो ऐसे महापुरुष को जो आपके पिता माता है उनको सांत्वना दे सकूं, ये संभव है। उसके लिए कृष्ण कहते हैं सौम्य हमारे कैसे, सौम माने सौम, तुम्हें हमारे कैसे, उनको देख करके ही कृष्ण हमारे पिताजी को कुछ सौम्य से भाव से उनकी संभावना हो सकती। यहाँ विशेषण, यहाँ इस विशेषण का तात्पर्य सौम्य का ये है, सर सर कोमल रीतिशील द्वारा प्रतिबिंब, जैसे चंद्र स्वाभाविक रूप में सर सौम्य मृदु कोमल सरस और
स्निग्ध
स्निग्ध है, ऐसे ही तुम भी हो, तुम जाकर के इसी रूप में सर्व स्वभाव से हमारे पिताजी को प्रतिविधान कर दो। अथवा हमारे पिताजी जब देखेंगे हमारे समान ही तुम्हारा सांवला रूप है, हमारे ही वस्त्र पहन करके जा रहे, अपना पितांबर दे दिया था, अपनी ओढ़नी दे दी थी, केवल वंशी तो थी नहीं जो दें और बाकी तो नहीं जैसा सांवला, तब महाराज महाराज जैसा नहीं कि समान रूप है, देखकर के पिताजी को बड़ा आनंद होता है। इसलिए उद्धव जी को यहाँ पर प्रोत्साहित कर रहे हैं सौम्य का, और देखो गोपियों के संबंध में बतला रहा हूँ, उनको हमारा ये संदेश, नंद बाबा के लिए संदेश नहीं दिया, उनको पिताजी का नाम उनको समझाने के लिए चातुरी इत्यादि का, और गोपियों के लिए क्या, तुम हजार लाख चातुरी करके उनका वीरा बढ़ जाएगा, उनका वीरा केवल सौम्य हो सकता है, किस तरह से हमारे संदेश के लिए, हम जैसे अक्षर रूप में जो उपयोग कर रहे हैं उसको नोट कर लो और उसी को करो, अपनी तरफ से कोई चतुराई और शब्द इत्यादि से मत। तथा हमारे वीर में गोपियों की जो मनस्था जो देहात्मी है अपनी चतुर्ता के द्वारा समझाने की चेष्टा मत करना, हमारा संदेश केवल सुनाना, पहले पहला काम है, फिर दूसरा काम है, उससे नहीं हो तो तीसरा काम है, जितने मैं दे रहा हूं। किंतु हुआ क्या, उद्धव जितने का रहे हैं उनका उनका और यहाँ तक कि जीने की जो आशा थी कि कृष्ण आएंगे तो भी समाप्त हो गई, जीवन की आशा
थी
क्या है जीवन की जो आशा थी ये भी समाप्त
हो गई, धारयंती कथन चला
नलिनाथ पदारविंद
तो आवश्यकते नलिनाथ
आवश्यकते गोपियों ने कहा था, क्रोधित होकर के कहा, धीरे से तप्त होने पर बड़े क्रोधित होकर के समझ लेते तो शिक्षा देने आ रहे हो, हमें हमें शरणागति की शिक्षा दे रहे हो और सर्वत्र ब्रह्म दर्शन की बात कर रहे हो, हमारा अपने आत्मारे प्रति जो भाव है बाल्य काल से जब लघु किया गया आत्म प्रति सुने हम सब आदेश और हमको तुम योग किया अभ्यास करने की शिक्षा दे रहे हो, इसलिए कह रहे हैं देखो हमारा जो के हृदय में जो भी आदमी है वो शांत नहीं होगी तो हजार चेष्टा कर रहे, जैसे भी माता पिता प्रवृत्ति कथन प्रति विधान समझ तुम्हारी बातों से माता पिता को कुछ सांत्वना मिल जाएगी, भैया कब पशु में आ जाए, कृष्ण ने कहा है हम जरूर आए, ये सब तुम कह सकते हो और भी बड़ी बड़ी बातें कह सकते, उनकी हो सकती है संभव गोपियों का नहीं तथापि गोपियों की आदि विमोचन गोपियों के लिए जो आदि है रोग है कृष्ण ने कोई श्लोक बोला उद्धव जी को संदेश को देने, उसने उन्होंने दिया उद्धव के समझ में नहीं आया होगा। तैयारी गोपिया तुमको याद है, मैं सबके साथ एक एक कृष्ण के रूप में तुम लोगों के पास में था और तुम्हारी सेवा की, याद है किस तरह से तुम्हारे हमने मुख को से पसीने के बूंदों को और जो क्रीड़ाएं की तुमको याद नहीं, तुमको याद नहीं होगा जिस समय गोपियों के पति लोग उनको रोक रहे थे और जिसने उनको रोका जो खतेंद्र में थी वहीं से फिर अपनी में जल करके सबसे पहले हमारे पास में वो पहुंची, उसमें से तुम लोगों में से कोई होगा याद है। उद्धव जी क्या समझेंगे इस चीज को, ये कौन सी गोपी आई और कृष्ण से पहले आकर के मिली, फिर रासलीला में सम्मिलित हुई, कहेंगे से वो जो तुम लोग ये मत समझो ये स्तुति है बल्कि साक्षात रूप से ही हमारा तुम्हारा मिलन है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ करके कहीं नहीं जा सकता, सब समय तुम्हारे पास तुम्हारे कर तो उसको